पुस्तक सामर्थ्य के साथ सुसमाचार की घोषणा करना। लेखक रॉबर्ट प्रकाश। अध्याय 6, यीशु का नमूना और प्रेरितों की प्रेरणा का स्रोत। यीशु हमारा एकमात्र मानक, स्टैंडर्ड। पिछले अध्याय में हमने एक अद्भुत सच्चाई सीखी थी, जो कि यह है कि यीशु मसीह का जीवन परमेश्वर के सिद्ध एवं ना बदलने वाली इच्छा का प्रकाशन, प्रगटीकरण था। लेकिन इससे बढ़कर भी कुछ है जो कि हम इस अध्याय में सीखेंगे, वह यह है कि यीशु ही हमारा नमूना, मॉडल और हमारी सेवकाई, विश्वास और प्रेम का मानक, स्टैंडर्ड है। यीशु मसीह को पिता ने भेजा, वह मनुष्य के रूप में हमारी स्वाभाविक प्राकृतिक सीमाओं में सीमित होकर जन्मा, ताकि अपने संदेश और कार्यों को समस्त राष्ट्रों तक ले जाने का हमें स्पष्ट नमूना दे सके और उसके उदाहरण से हम सीख सकें कि किस प्रकार से हम उसके संदेश को लोगों तक पहुंचाएं। यीशु के जीवन के विषय में लोगों की जो सोच है, यह बात उस सोच से ठीक विपरीत और उलट है। मैं भी कभी यीशु के जीवन को उस दृष्टिकोण, नज़रिए से देखता था और सोचता था कि यीशु तो परमेश्वर थे और उनके जैसा नहीं बना जा सकता है और उनके जैसे कार्य हम कभी नहीं कर सकते हैं। ध्यान दें कि यीशु के जीवन को हमें किस नज़रिए से देखना चाहिए। परंपरागत सोच। इस सोच में हम यह मानते हैं कि यीशु उन चमत्कारों को, जिनका वर्णन हमें मत्ती, मरकुस, लूका और यहुन्ना में मिलता है, इस कारण कर सका क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र था। सत्य। सच्चाई तो यह है कि यीशु ने वे सब चमत्कार परमेश्वर के पुत्र के रूप में कार्य करते हुए प्रकट नहीं किए, वरन मनुष्य के रूप में परमेश्वर पिता के प्रति पूरी तरह से समर्पित, अधीन होकर एवं पवित्र आत्मा से सामर्थ्य पाकर किए थे। जब तक आप पारंपरिक सोच को लिए रहेंगे, तब तक आप यीशु जैसे कार्य को करने के लिए कभी भी प्रेरित नहीं हो पाएंगे। लेकिन यदि आप इस सच्चाई पर विश्वास करेंगे कि यीशु का जीवन हमारे लिए एक नमूना है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और सहायता से हम भी उसके जैसा जीवन जी सकते हैं और उसके जैसे कार्य कर सकते हैं, तो आप विश्वास में उसके समान बनने का प्रयास करेंगे। प्रेरित यहुन्ना साफ साफ यही कहते हैं, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। पहला यहुन्ना का 2:6। मित्रों, यीशु से अधिक प्रेरणादायक और कोई नहीं है। जब आप सुसमाचार इंजील को पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको यीशु जैसा बनने के लिए आमंत्रित कर रहा है कि आप उन कार्यों को करें जो कि यीशु ने किए, जिससे कि आप पिता के हृदय को प्रकट कर सकें और शैतान के कार्यों का नाश कर सकें। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब तक पवित्र आत्मा यीशु पर नहीं उतरा, उससे पहले यीशु ने चमत्कार, चंगाई के कार्यों को क्यों नहीं प्रकट किए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने से पहले उसने क्यों नहीं दुष्ट आत्माओं को लोगों के अंदर से निकाला? सच्चाई तो यह है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए बिना वह इन कार्यों को कर ही नहीं सकता था। जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, उसके बाद ही उसने पानी को दाखरस में बदला, यहुन्ना 2:11, और फिर अपनी सेवकाई को प्रारंभ किया। यह सब पिता परमेश्वर के द्वारा पहले से ही निर्धारित किया गया था एवं ठहराया गया था। यीशु के जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान के छोटे से छोटे पहलू का अपना अर्थ और कारण है, और उसका जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान बहुआयामी है। जो मैंने बताया है, उसकी पुष्टि परमेश्वर के वचन में कर लेते हैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। फिलिप्पियों 2:5-8। यीशु ने खुद व खुद स्वेच्छा से अपने आप को शून्य, खाली कर दिया था। उसने अपने आप को ईश्वरीय सामर्थ, ज्ञान और विशेषाधिकारों से खाली कर दिया था, ताकि वह हम सबके लिए एक नमूना, प्रारूप, मॉडल अथवा उदाहरण प्रस्तुत कर सके। हर एक चमत्कार उसने पवित्र आत्मा पर निर्भर रहते हुए और पवित्र आत्मा की सहायता से प्रकट किया और हर एक भेद, ज्ञान का वचन और नबुवत जो उसे प्राप्त हुए वे पवित्र आत्मा की सहायता से पिता परमेश्वर की धीमी आवाज़ को सुनने के द्वारा उसे प्राप्त हुए। क्या वह स्वयं अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा और बिना पवित्र आत्मा की सहायता पर निर्भर हुए ये सब चमत्कार और अद्भुत कार्य कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था, परंतु ऐसा करने पर उसका जीवन मेरे और आपके लिए एक प्रेरणादायक नमूना, मॉडल और उदाहरण नहीं बन पाता। यीशु ने बड़े सामर्थी रूप से केवल 3 वर्ष ही सेवा की, केवल 3 वर्ष तक ही क्यों? अपने पुनरुत्थान अथवा पुनर्जीवित हो उठने के बाद भी वह अपनी सेवा को संसार भर में जारी रख सकता था, लेकिन फिर भी वह इतनी जल्दी सब कुछ छोड़कर क्यों चला गया? दोस्तों, आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि पिता ने मनुष्य के लिए जो योजना सृष्टि के आरंभ से बनाई थी उसने उसे खत्म या रद्द नहीं किया है। यह परमेश्वर की इच्छा थी और आज भी है कि मनुष्य पृथ्वी का प्रबंधक एवं संचालक बनकर पृथ्वी पर प्रभुता करे। उत्पत्ति 1:28, भजन संहिता 115:16। और यीशु उस खोए हुए अधिकार और प्रभुता को हमें वापस दिलाने के लिए आया। शैतान से उसने उस अधिकार को वापस हासिल किया, फिर वह अधिकार हमें लौटा दिया। परमेश्वर चाहता है कि स्वर्ग की उस भलाई को हम पृथ्वी पर फिर से स्थापित करें। यदि हम यीशु के नमूने का अनुसरण करेंगे तभी हम ऐसा करने में सफल होंगे। आप कह सकते हैं कि यीशु तो पाप रहित निष्पाप थे और हम तो सिद्ध नहीं हैं और पाप के साथ जूझते रहते हैं। मेरे मित्र, आज परमेश्वर हमारे बीच पाप कोई मुद्दा या मसला है ही नहीं, क्योंकि हमारे पाप का प्रायश्चित यीशु ने किया। हमारे पाप की सजा उसने सहकर हमें उस सजा से मुक्त आज़ाद कर दिया है। परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, रोमियो 5:20। रुकावट पाप नहीं परंतु अविश्वास है। हम यह विश्वास नहीं कर पाते कि महज यीशु का लहू हमें परमेश्वर के सामने धर्मी और ग्रहण योग्य बनाता है। हम संदेह करते हैं और अपने पाप और नाकामियों पर ही ध्यान केंद्रित करने के द्वारा यीशु के लहू के अलौकिक प्रभाव को कम कर देते हैं। धार्मिकता का दान आपको परमेश्वर की धार्मिकता बनाता है, ना कि पाप रहित मनुष्य की धार्मिकता। 2 कुरिन्थियों 5:21। प्रिय मित्र, यीशु का लहू हमें पिता के समक्ष ग्रहण योग्य बनाता है। उस लहू के द्वारा हम पिता तक पहुँचने की योग्यता हासिल करते हैं। हमारी पहुंच और संबंध पिता से ठीक उस तरह का बन पाता है जिस तरह का संबंध यीशु का पिता के साथ है, और उस तरह की पहुंच पिता तक हमारी हो जाती है जिस तरह की पहुंच यीशु की पिता के पास तक है। दोष लगाने वाले और हमें दोषी ठहराने वाले शत्रु की आवाज़ को सुनना बंद करें और संदेह को अपने अंदर जगह ना दें। प्रेरितों की प्रेरणा। प्रेरितों के कार्यों की पुस्तक यीशु की गैर मौजूदगी में उसके चेलों के द्वारा उसके पद चिन्हों पर चलने के प्रयास को दर्शाती है। हमें यह समझना होगा कि यीशु के चेले मेरे और आपकी तरह मनुष्य थे और गलतियां भी करते थे, जबकि इसके ठीक उलट यीशु ने कभी भी कोई गलती नहीं की और जो कुछ उसने किया बड़ी निपुणता से किया और उसके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में पिता की इच्छा की झलक दिखाई देती थी। यीशु के चेलों और प्रेरितों का संघर्ष हमें प्रेरणा प्रदान करता है उनके जैसे सेवकाई करने की, और हम उसकी सफलताओं और नाकामियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब भी आप उनके विषय में पढ़ते हैं तो याद रखें कि वे हमारे लिए नमूना, मॉडल नहीं हैं, परंतु वे हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं कि जो कुछ यीशु ने कहा है वह निश्चित रूप से संभव है और चेलों ने उसे करना शुरू कर दिया था। उनकी गलतियों पर ध्यान दें। कभी कभी वे ढोंग और दिखावा करते थे और कभी एक दूसरे से अलग हो जाते थे, अर्थात एक दूसरे का साथ छोड़ देते थे। गलातियों 2:11-14, प्रेरितों का काम 15:38-40, दया और अनुग्रह करने की जगह दोष लगाते थे। प्रेरितों 5:1-10, 8:20-23, और कभी कभी संकीर्ण सोच और विचारधारा वाले बन जाते थे। प्रेरितों के काम 10:11-15, फिर भी उनके द्वारा बहुत से चमत्कार प्रकट हुए और बहुतों ने उद्धार पाया और संसार भर में उनके द्वारा सुसमाचार पहुंचाया गया। प्रेरितों के काम 5:14-16 में हम पढ़ते हैं कि सभी बीमार और अशुद्ध आत्माओं के सताए सब अच्छे कर दिए जाते थे, अर्थात सेवकाई में यीशु के अस्तर की सफलता कामयाबी तक वे पहुंच गए थे। मेरे मित्र, पत्रस, फिलिप्पस और पौलुस हमारे लिए एक नमूना, मॉडल नहीं है, परंतु यीशु हमारे लिए वो नमूना है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। परंतु पत्रस, फिलिप्पस और पौलुस के विषय में इस कारण पवित्र शास्त्र में लिखा गया है ताकि हम यह जान पाएं कि यीशु के समान सामर्थी रूप से चिन्ह और चमत्कारों सहित सेवा करना मेरे और आपके लिए संभव है। चिन्हों के द्वारा सेवकाई, यीशु की सेवकाई के समान ही प्रारंभिक कलीसिया के विश्वासी जब सुसमाचार प्रचार करते थे तो चिन्ह और आश्चर्य कर्म को प्रकट करते हुए देखते और अनुभव करते थे। मरकुस 16:15-20, आइए कुछ पदों को पढ़ें ताकि चिन्हों को और उनके विस्तार फैलाव का अध्ययन कर सकें। तो हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। इब्रानियों 2:3-4, यह चिन्ह, अद्भुत काम, सामर्थ्य के काम और पवित्र आत्मा के वरदान सुसमाचार के संदेश को प्रमाणित अर्थात सच्चा साबित करने के लिए, यीशु की वास्तविकता को स्थापित करने के लिए और परमेश्वर के हृदय, प्रेम और स्वभाव को लोगों पर जाहिर करने के लिए प्रकट होते हैं। हमें भी ऐसे ही प्रत्याशित चिन्हों और कामों की इच्छा और उम्मीद रखनी चाहिए। ध्यान दें प्रेरितों के 3 अध्याय में प्रकट हुए चमत्कार पर, और ध्यान दें कि उस चमत्कार ने सुसमाचार प्रचार के लिए किस प्रकार से एक मंच तैयार कर दिया और रास्ता खोला। जब वह पत्रस और यहुन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ आए। यह देखकर पत्रस ने लोगों से कहा, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 मनुष्य के लगभग हो गई। प्रेरितों के काम 3:11-12, 4:4, इस एक चमत्कार के कारण हजारों लोगों ने पत्रस की बात को ध्यान से सुना क्योंकि उस चमत्कार ने सुसमाचार के लिए मंच तैयार कर दिया और सुसमाचार की प्रामाणिकता और वास्तविकता को प्रकट किया और 5,000 लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। मित्रों, सुसमाचार के साथ महज एक चमत्कार प्रकट होने पर हजारों लोग उद्धार पा सकते हैं। फिर ऐसा हुआ कि पत्रस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लगवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पत्रस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ, अपना बिछौना उठा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। प्रेरितों के काम 9:32-35, हर एक जिसने इस चमत्कार को देखा था उसने यीशु पर विश्वास किया और उद्धार पाया। उपरोक्त दोनों स्थान पर हम देखते हैं कि चमत्कार और आश्चर्य कर्म ने सुसमाचार प्रचार का रास्ता खोला और उसका यह असर हुआ कि लोगों का ध्यान सुसमाचार की ओर केंद्रित हुआ। इच्छुक लोगों की संख्या बढ़ी, लोगों के हृदय में से संदेह दूर हुआ और यीशु पर विश्वास करने का उनका संकल्प और मजबूत हुआ। ठीक इसके उलट यह भी हुआ कि पहले सुसमाचार प्रचार किया गया और जैसे ही लोगों ने उद्धार के संदेश को कान लगाकर सुना तब पवित्र आत्मा ने उसके हृदय में विश्वास को उत्पन्न किया अथवा जगाया। और नीचे आप देखेंगे कि सुसमाचार प्रचार के द्वारा चमत्कार के लिए लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ और वे पौलुस और बर्नबास वहां सुसमाचार सुनाने लगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आया है। प्रेरितों के काम 14:7-11। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर चलेंगे तो सुसमाचार की सफलता के लिए चंगाई और चमत्कार प्रकट होंगे तथा लोगों को शैतान से छुटकारा प्राप्त होगा और चिन्ह चमत्कार और सामर्थ्य के कामों के साथ हम सुसमाचार प्रचार कर पाएंगे। चमत्कार और सुसमाचार आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की सफलता में सहायक बनते हैं, साथ ही साथ ज़्यादा प्रभाव डालते हुए पृथ्वी पर स्वर्ग को तेजी से स्थापित करते हैं। हर बार जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है तब परमेश्वर चिन्ह प्रकट करना चाहता है और सामर्थ्य के साथ अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता है। चिन्ह सुसमाचार का एक ठोस और वास्तविक अनुभव है। हर एक बार जब चमत्कार प्रकट होता है परमेश्वर चाहता है कि उसका उद्धार का संदेश खोए हुए लोगों के हृदय तक पहुंचे। विश्वास को बढ़ाने वाली गवाहियां। हमने महाराष्ट्र में सभाएं आयोजित की और वहां बीमार और दुष्टात्माओं के सताए हुओं के लिए प्रार्थना करने पर विशेष जोर दिया। चंगाई चमत्कार जो उन सभाओं में प्रकट हो रहे थे उनके कारण हर रात सभाओं में लोगों की गिनती संख्या बढ़ती जा रही थी। एक शाम सुसमाचार प्रचार करने के बाद हमने बीमारों को आगे बुलाया। जहां भी यीशु का नाम प्रचार किया जाता है और लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वहां के माहौल को पवित्र आत्मा कब्जे में ले लेता है। लोगों के लिए प्रार्थना करने के बाद हमने उन लोगों को गवाही देने के लिए आगे बुलाया जिन्हें यीशु ने चंगा किया था। लगभग 9 साल की एक बच्ची मंच पर अपनी माँ के साथ आई। भीड़ के सामने वह बच्ची आगे और पीछे झुक कर दिखा रही थी। उसकी माँ ने बताया कि जन्म से ही उसकी रीढ़ की हड्डियाँ विकृत और टेढ़ी थी जिसके कारण वह आगे पीछे झुक नहीं पाती थी। उन्होंने सुसमाचार को सुना और विश्वास किया। पवित्र आत्मा ने यह चमत्कार प्रकट किया। उसी शाम मंच पर से प्रचार करते समय मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कोने में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। ज़्यादातर लोग ज़मीन पर बैठे हुए थे क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों के बैठने के लिए हम कुर्सियों का प्रबंध अथवा इंतज़ाम नहीं कर पाए थे। प्रार्थना के समय वे उठ खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ उसने ऊपर उठा लिए। एक क्षण के बाद मैंने उसे ज़मीन पर गिरा हुआ देखा। बहुत से लोग गवाही देने के लिए मंच पर आगे आ रहे थे। यह बूढ़ा व्यक्ति भी आगे आया। मैं यह जानने के लिए बेचैन था कि उस व्यक्ति को क्या हुआ था। उसने बताया कि वह बहुत सी बीमारियों से पीड़ित था जो कि बहुत सालों से उसे थी और उसे हमेशा दर्द बना रहता था। जैसे ही प्रार्थना में उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया उसे शरीर में बिजली का सा झटका लगा और वह ज़मीन पर पीछे की ओर गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसने महसूस किया कि जिन बीमारियों से वह पीड़ित था उन बीमारियों के सभी लक्षण उसके शरीर में से चले गए हैं और वह दर्द और पीड़ा से आज़ाद हो गया है। उस दिन जो कुछ चमत्कार और चंगाइयाँ हुई वे बहुत ही प्रभावी थी और उन कार्यों की खबर और लोगों तक भी पहुंची। अगली शाम जैसे ही मैंने प्रचार करना समाप्त किया एक एम्बुलेंस मैदान में पहुंची जिसमें एक जवान लड़के को लाया गया था जिसका मोटरसाइकिल दुर्घटना में कंधा बहुत तरह से जख्मित हुआ था और कई पसलियां भी टूट गई थीं। उस जवान को जब हमारी सभाओं के बारे में पता चला तो उसने एम्बुलेंस ड्राइवर से निवेदन किया कि वह उसे अस्पताल ना ले जाकर हमारी उन चंगाई सभाओं में ले जाए। अचंभे की बात यह है कि ड्राइवर उसे उन सभाओं में लाने को तैयार हो गया और वे सभा स्थल तक पहुंचे। उस जवान लड़के को मंच पर लाया गया और तुरंत पवित्र आत्मा ने अपनी चंगाई के कार्य को करना शुरू कर दिया। उसका सारा दर्द चला गया और उसकी पसलियों में और शरीर में जो चोट लगी थी उससे भी उसे चंगाई मिली। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से ध्यान देने के लिए व्यवहारिक प्रश्न। पहला प्रश्न, इस अध्याय को पढ़ने से पहले क्या आप यह समझते और विश्वास करते थे कि यीशु चमत्कार इसलिए कर पाते थे क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र थे? यदि हाँ तो क्या आप समझते हैं कि उन पारंपरिक सोच ने आपको चमत्कार के लिए विश्वास का कदम उठाने से रोके रखा और किस प्रकार से रोके रखा? सच्चाई जानने पर किस प्रकार से आपको चमत्कारों के लिए प्रभु पर विश्वास करने की आज़ादी मिली है? दूसरा प्रश्न, आखिर केवल यीशु ही क्यों हमारी सेवकाई का नमूना मॉडल है? तीसरा प्रश्न, किस आधार पर यीशु अलौकिक कार्य करता था? चौथा प्रश्न, क्या इस बात पर विश्वास करना आपको उत्साहित करता है कि आप भी वे बड़े कार्य जो यीशु करते थे कर सकते हैं, या यह बात आपको निराश करती है, क्यों? पांचवा प्रश्न, प्रेरितों के कार्यों की पुस्तक में आप किस व्यक्ति के द्वारा अधिक प्रेरित और प्रभावित हैं, क्यों? छठवां प्रश्न, क्या आपने व्यक्तिगत रूप से अपनी सेवकाई में किसी चमत्कार को देखा या अनुभव किया है? यदि हाँ, तो क्या उन चमत्कारों के द्वारा दूसरे लोगों का विश्वास बढ़ा है? यदि हाँ, तो कैसे? सातवां प्रश्न, इस अध्याय ने किस प्रकार से सेवकाई में चमत्कारों की उम्मीद लगाने के लिए आपको तैयार किया है? क्या आपके विश्वास एवं मनोभाव में ऐसी कोई चीज है जो कि आपको चिन्ह और आश्चर्य कर्म पर विश्वास करने से रोक रही हो? यदि हाँ, तो बताएं कि वह कौन सी चीज है और उसके लिए प्रार्थना करें। आठवां प्रश्न, अपने प्रभाव के क्षेत्र में सुसमाचार को चिन्ह और आश्चर्य कर्म के साथ ले जाने के लिए आप कौन से व्यवहारिक कदम उठाएंगे? नौवां प्रश्न, चिन्ह और आश्चर्य कर्म किस प्रकार से सुसमाचार को आगे तक बढ़ाते पहुंचाते हैं? एक क्षण के लिए कल्पना करें और देखें चिन्ह चमत्कारों और छुटकारे को सामर्थ्य रूप से अपने सामाजिक दायरे में होते हुए देखें। आप क्या कल्पना करते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा? प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपके सामाजिक दायरे में काम करना शुरू करें।